स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 15। विदेशो नित्याभिनिविष्ट चेतः विद्वांस दोषं परवेत्तहर्तो प्रेत्येवाथाप्यचितेन्द्रियस्तः दशान्तकामो हर्ते कुटुम्बे। पीछे दोहराइए, यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है तो वह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे। यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे सरकारी नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है, लेकिन तो भी वह धन अर्जित करने के लिए अन्यों को धोखा देता रहता है। तात्पर्य पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। आजकल विशेष रूप से लोग ना तो अगले जीवन में विश्वास करते हैं, ना यमराज के न्यायालय में तथा पापी को मिलने वाले विविध दंडों में, किंतु उन्हें कम से कम इतना तो जान लेना चाहिए कि जो अन्यों को ठग कर धन प्राप्त करता है वह सरकार के नियमों द्वारा दंडित होगा। फिर भी लोग ना तो इस जीवन के ना ही अगले जीवन के नियमों की परवाह करते हैं। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह अपने पाप कर्मों को नहीं रोक पाता यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ है। हरे कृष्ण। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है तो वह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता। इस श्लोक के परपट में दो तीन बातें निकल के सामने आ रही हैं। एक कि उसका मन सदैव पारिवारिक भरण पोषण में डूबा रहता है, तो उसका बैड इफेक्ट क्या है? गुड इफेक्ट्स तो है ही है, पारिवारिक भरण पोषण हो रहा है, परंतु स्पिरिचुअल एंगल से आध्यात्मिक तौर पे सोचें तो उसका जो है बैड इफेक्ट क्या है, नंबर एक। दूसरी बात आ रही है, जो अन्यों का धन लेता है उसे मृत्यु के बाद यमराज के नियमों और इस संसार में सरकारी नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद क्या होता है, दूसरी बात। और तीसरी बात आ रही है कि चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह अपने पाप कर्मों को रोक नहीं पाता। तो ये तीन चीजें जो है इस श्लोक में खिल के सामने आ रही है, इनका हम जो है आज ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, क्या कारण है उसका, क्या रीजन है, इंद्रियों को वश में क्यों नहीं कर पाता, समस्या कहां आती है? भगवान जो है दूसरे अध्याय में बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संग तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति प्रशांत बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भव कूप में गिर जाता है। तो बिगनिंग कहां से हुई? बिगनिंग हुई है इंद्र विषयों का चिंतन करने से। जब व्यक्ति पारिवारिक भरण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त तो हो जाएगा, यहां आसक्ति शब्द आ रहा है, आसक्ति, आसक्त होने का अर्थ यह है कि उसका उसमें राग हो गया है कि दिस इज माई ओनली जॉब, मेरा कर्तव्य क्या है कि अपने परिवार के लिए सुख भोग का इंतजाम करूं, सो दैट दे कैन एंजॉय टू देयर बेस्ट। हर सुख सुविधा जो आज के समय में उपलब्ध है उस सुख सुविधा का इंतजाम जो है पारिवारिक सदस्यों के लिए करना मेरा कर्तव्य है, ये फील उसके अंदर आ जाता है। भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है ये उसके पता नहीं, उसको मालूम नहीं, उसके ध्यान में उसके चिंतन में ये फिर एक बात समाई रहती है कि किस प्रकार मैं अपने लिए और किस प्रकार मैं अपने परिवार के लिए इस भौतिक सुख भोग की सामग्री का इंतजाम करूं। तो विषय क्या है? विषय इंद्रियों के विषय, जो कान का विषय है शब्द, आंख का विषय है रूप, जीवा का विषय है रस, रस, नाक का विषय है गंध और त्वचा का विषय है स्पर्श। ये चीजें जब उसको टच आता है इंद्र विषयों का इंद्रियों के साथ, तब उसके अंदर एक आसक्ति पैदा हो जाती है कि यस मुझे इसके प्राप्त करना है, आई वॉन्ट इट। उदाहरण देता हूं, अगर आपने किसी वस्तु को ना देखा है ना सुना है तो उसकी चाहना होगी, डिजायर पैदा होगी उसके बारे में, ना देखी है ना सुनी है ना टच किया है ना सूंघा है, या खाने की वस्तु है तो टेस्ट नहीं करी है उसका नहीं मालूम है। तो जब तक आपका इंद्रियों का संयोग उस इंद्रिय विषय के साथ उस वस्तु के साथ नहीं होगा तब तक आपकी उसमें आसक्ति नहीं होगी, आपके मन में डिजायर पैदा नहीं होगी। कोई भी उदाहरण उठा लीजिए, न्यूज़पेपर में आजकल ऐड आ रही है एप्पल का आईफोन 6 आया है कि 5 आया है, लेटेस्ट 5 आया है, कितने लोगों ने देखा, देखा है क्या? प्रभु जी ने देखा, कैसा लगा? अगर आपको फोन दिखा दें और फिर कानों से आप सुन लो कि फोन की वर्किंग कैसी होती है, कैसा काम करता है, क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, तो मन के अंदर उसको प्राप्त करने की एक कामना जागृत हो जाएगी, आपके मन के अंदर सबसे पहले उसके प्रति आसक्ति आएगी। आसक्ति आने के बाद फिर आपके अंदर कामना हो जाएगी कि यस मुझे ये प्राप्त करना है। तो पहले आती है स्फुरना, जो स्फुरना कहते हैं कि यस इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, आंख से मिला, कान से मिला, किसी ना किसी इंद्रिय से मुझे इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। आपसे किसी ने ये कहा, भाई लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बाहर एक समोसे वाला बैठता है, उसके समोसे बड़े टेस्टी होते हैं, सुन लिया ना? सुनते ही जीवा में पानी टपकने लगा, जरा इस कनॉट प्लेस की तरफ गए, यार उसने कहा था इसके समोसे बहुत बढ़िया हैं, आज खा के देखते हैं, तो खाने के एक कामना आ गई। नहीं, कामना कब आई? जब उसके बारे में सुना, एक बार टेस्ट कर लिया, अच्छे लगे, तो फिर परिवार को लेके चलो वहां चलते हैं, अरे मैं खा के आया था, बड़े बढ़िया, आज क्राउड प्लेस घूम के आएंगे, वहां समोसे खिलाएंगे तुमको। मींस आप जो है जैसे ही इंद्रियों का इंद्र विषयों के साथ संयोग होता है तभी जो है आपके अंदर आसक्ति आ जाती है, और आसक्ति आते ही कामना अर्थात डिजायर्स आनी शुरू हो जाती है, यस मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये कार्य फुलफिल करना है, किसी भी कीमत पे किसी भी तरीके से मुझे इसको हासिल करना। अब धन नहीं है और एप्पल 5 खरीदना है, मन है ना खरीदने का, देखा है? नहीं नहीं अभी नहीं होगा, हो जाएगा। अब आप उसको खरीदना चाहते हैं और उसको खरीदने के लायक आपके पास पैसे है नहीं, क्या करोगे? कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, कोई ना कोई तरीका अडॉप्ट करके, कोई ना कोई सिस्टम लगा के आप जो है उसको प्राप्त करना चाहोगे, क्योंकि जब अपना मित्र आपका जो है उसे इस्तेमाल कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको चला रहा है, तो आप उसको देख देख के आपके मन में आता है जब ये चला सकता है तो मैं क्यों नहीं चला सकता। बात होती है मित्रों से, पत्नी से, संबंधियों से, किसी से, जानकार से, कहते हैं क्रेडिट कार्ड यूज कर लेना, किस्तों में देने हैं, दिखा तो है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट फ्री है, क्या प्रॉब्लम है, देना तो है ना। वो देने के लिए तो धन का जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो आपको उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहेंगे जो आपके लिए रूटीन में संभव नहीं है, कर नहीं सकते परंतु करना चाहेंगे। ऑफिस में काम करते हैं, एक थोड़ा सा पैसा पकड़ लेता हूं टेबल के नीचे से, आ जाएगा फोन, यानी गलत कार्य है, रिश्वत लेना भ्रष्टाचार है, पाप का कार्य है, दूसरों के धन को हड़पने वाली बात है। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं दूसरों को ठगता हूँ, दूसरों का धन हड़प लेता हूँ, तो मुझे जो है तामसीर नरक मिलता है, तो मुझे नरक नहीं भोगना है। अजी किसने देखा है, किसी ने देखा है क्या? मरने के बाद तो सबको भगवान में मिल जाना होता है, नरक कौन जाता है? सर नरक यही है, बाहर नहीं है कहीं, सब यही है। ऐसी बातें सोच सोच के, उल्टी सीधी बातें जो कि शास्त्र द्वारा रिकमेंडेड नहीं है, उन बातों को सोच के, उन बातों को विचार करके आप जो है उस कार्य को कर बैठते हो। पत्नी कहती है अजीब धन चक्कर हो तो, वो तुम्हारा दोस्त है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी भी रखे हुए हैं, सारे फोन LCD लगा हुआ है, 440 लीटर का फ्रिज लगा रखा है, बढ़िया बढ़िया इंतजाम है। अरे भाई वो रिश्वत खाता है, मैं रिश्वत नहीं खाता हूँ, बेईमानी कार्य करता है, बेईमानी कार्य तो कुछ दिन कर लो, कौन आफत मची, कुछ दिन करने से क्या नुकसान हो जाए, बाद में नहीं करना, एक बार कर लो, सामान ले आओ, उसके बाद मत करना। इंद्र विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है और आसक्ति से कामना आती है। उस कामना को चूंकि आप फुलफिल करने की स्थिति में नहीं हो तो क्रोधाता गुस्सा आ जाता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, व्यवहार बदल जाता है। जब व्यक्ति का चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध आता है, तो कभी अजमा के देखिएगा, क्रोध के आवेश में आपको भूल जाता है कि आप किसके साथ खड़े हो, किस पे क्रोध कर रहे हो। व्यक्ति घर के अंदर माता पे क्रोध कर देता, पिता पे क्रोध कर देता, आजकल तो हाथ भी उठा देते, मतलब आपकी स्मृति का विभ्रम हो गया, आपको याद नहीं रहा कि मैं किससे बात कर रहा हूं, किसके प्रति क्रोध कर रहा हूं। हिज होलीनेस वहां विष्णु स्वामी एक लेक्चर में कहते हैं, बड़ा सुंदर शब्द कहे उन्होंने, कि जब आप क्रोध करते हो तो जिस व्यक्ति पे क्रोध कर रहे हो तो आपके सामने खड़ा है, फिर आप जोर जोर से क्यों बोलते हो? आहिस्ता बोलते हो कि जोर जोर से बोलते हो? तो सामने है, इन पे क्रोध हो रहा है, तो मेरी आवाज जो है वो बाहर वाले तक को सुनाई दे रही है, ऐसा क्यों, किस लिए? कुछ कारण होना चाहिए ना। उसका कारण यह है कि जब व्यक्ति का प्रेम होता है तब वो जोर से बोलता है कि फुसफुसाहट करता, कैसे बोलता है वो, कैसे हो, किधर में लोग हैं, ऐसे ही बोलता है ना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपके हृदय एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। जब प्रेम होता है तो हृदय पास पास है, तो आपको लगता है कि हृदय पास पास होने से मेरे मन की आवाज वो सुन लेगा, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, आंखों से जता दिया जाता है, हाव भाव से प्रेम प्रकट हो जाता, बोलने की आवश्यकता पड़ती है क्या? जब प्रेम होता है तो आंखों से जिता दिया जाता है, हाव भाव आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो व्यवहार है, उससे प्रेम छलकता। और जब क्रोध होता है तो आपके दिल जो है, आपके हृदय जो है, वो दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि इस दूर हृदय में आवाज पहुंचाने के लिए मुझे जोर से बोलना चाहिए। अब जोर से बोलते हैं। जब समृद्धि का विभ्रम हो जाता है, मतलब आपको भ्रम हो गया, कंफ्यूजन हो गया, समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्मृति का विभ्रम हो गया है, स्मरण शक्ति आपकी चली गई है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य जो है पुनः भवकूप में गिर जाता। जब आप पारिवारिक भरण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, एसेंशियल्स होने चाहिए, जो आवश्यक है, जो जरूरी है, उसे पूरा करना है, जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए, संसार में रहने के लिए जो आवश्यक है, वे पेट को खाना तो देना ही है, परिवार गृहस्थ आश्रम है तो घर परिवार वालों को खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, प्रसाद तो लाना ही पड़ेगा उनके लिए। परंतु उस प्रसाद के अंदर, उस खाने के अंदर, अवंट से प्रसाद, उस खाने के अंदर आप ऐसी ऐसी चीजें लेके आते हो जो कि आपकी पॉकेट अफोर्ड नहीं करती, उधार उठा के। मित्र आ गए हैं घर में, एक मैंने छोटी सी पार्टी रखी है, मेरे 7-8 मित्र आएंगे आज उसके अंदर। अच्छा, तो क्या इंतजाम है? भाई शराब तो लानी ही पड़ेगी उसके लिए। पत्नी कहती है शराब पिलाओगे? बोले क्या करूं, दोस्त मानते नहीं हैं। अर्थात आप इस भौतिक संसार में सुख भोग के लिए, इंद्र तृप्ति के, आनंद के लिए गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो बात इस पर्वत के लास्ट लाइंस में आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो सरकारी नियमों द्वारा दंडित होगा या तामसीर नरक में जाएगा। एक शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रेत्य, प्रेत्य मतलब मरने के बाद। तो सवाल यह है कि जब मृत्यु हो जाती है तब जीव का क्या होता है? व्हाट हैपन्स शॉर्ट में? मृत्यु के बाद जो स्थूल शरीर है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है, उसको तो आप देह संस्कार कर देते हो, जला देते हो, दबा देते हो, पानी में बहा देते हो, वगैरह वगैरह, जैसा भी जिसके रिचुअल्स है, नियम है, उसके अनुसार आप उसका जो है कार्य क्रियाकर्म कर देते हो, कार्य हो गया। परंतु जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार नंबर एक, और नंबर दो जो जीवात्मा है, उसका क्या होता है? शरीर आपने जला दिया, और बाकी का क्या? जो सूक्ष्म शरीर है, जिससे मन, बुद्धि, अहंकार कहते हैं, क्या ये भी जल जाता है? क्या ये समाप्त हो जाता है? नहीं होता है तो इसका क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू इट? बताइए। तो शास्त्र कहता है कि जो सूक्ष्म शरीर है उसको मृत्यु के बाद एक लिंग शरीर की प्राप्ति होती है, जो कि उस जीव के अंगूठे के बराबर होता है, उस साइज का बनता है वो। सो मन, बुद्धि, अहंकार से लिंग शरीर की प्राप्ति होती है। अब दो मुहूर्त का मतलब है 96 मिनट, मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 1 घंटा 36 मिनट के अंदर जो है वो जीव यमलोक जाता है और वहां से वापस आ जाता है। कि हम लोग जाने के बाद उसको जो है वहाँ पर जो उसका खाता बही है, अकाउंट जो है, वो देखा जाता है कि इसको अब आगे क्या करना, इसके लिए आगे अब क्या होना चाहिए, इसको कौन सी योनि धारण करनी है। परंतु अगर उसने जो है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः समर्पित कर दिया हुआ है, भगवान के प्रति गुरु के माध्यम से शरणागति प्राप्त करी हुई है, तो वो सीधा गोलोक धाम जा सकता है, तब उसे यमलोक में जाने की आवश्यकता नहीं। अब वहां से आने के बाद वो जीव जो है वो 10 दिन तक उसी घर में रहता है जहां पर उसका वास था। जब तक आप उसका जो है और दैविक क्रिया कर्म नहीं कर देते हो, तब तक वो वहां से जाता नहीं, उसको छुटकारा इस प्रेत योनि से नहीं मिलता, इसको प्रेत योनि कहते हैं। जीव जो है जो कि इस भौतिक संसार के अंदर शरीर में रहा है, तो इसलिए इसको अब जो है मृत्यु के बाद पृथ्वी को छोड़कर जो बाकी 4 स्थूल तत्व हैं, इसमें कि जल है, अग्नि है, आकाश है और वायु है, उसमें 3 दिन तक ये पानी में रहता है, 3 दिन तक अग्नि में रहता है, 3 दिन तक आकाश में रहता है और 1 दिन के लिए वायु में रहता है, ये इसका डेस्टिनेशन है। अब उस जीव को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए आपको कार्य करना है, जिसको हम जो है कहते हैं पिंडदान। वो एक सेपरेट प्रोसेस है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे आज। तो ये दंड है कि उसको यमलोक जाना है और यमलोक से लौट कर आना है। तब आपका जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसके साथ सूक्ष्म इंद्रियां, उसके साथ आपके कर्मों के फल, ये सारी चीजें मिलके एक वाहन बनता है और जीवात्मा उसके ऊपर सवार होकर अगली योनि में जाता है, अगला शरीर धारण करता है। ये एक प्रोसेस है, ये उसी प्रकार होता है जैसे कि वायु जो है सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, इसी तरह जीवात्मा जो है वो इस वाहन पे सवार होकर एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। अब इसके जो आखिरी लाइन है उसके अंदर चर्चा आ रही है कि कोई चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपने पाप कर्मों को नहीं रोक पाता। क्यों नहीं रोक पाता? कि वो अपनी इंद्रियों को वश में करने में समर्थ नहीं। ऐसा ही एक प्रश्न जो है अर्जुन ने किया है भगवान से, अथ केना परिप्तु वयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छा नपि वार्षणया बलादेव नियोजिता। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता? न चाहते हुए आपको ज्ञान है कि ये कार्य गलत है, ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र द्वारा, लॉ द्वारा रिकमेंडेड नहीं है, परंतु फिर भी आप जो है उस पाप कर्म के प्रति प्रेरित हो जाते हो। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा। Somebody is compelling me, कोई फोर्स कर रहा है, न चाहते हुए भी मेरे से ये कार्य हो रहा है, ऐसा क्यों है? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, आज के युग में हम लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन जो है बहुत वैलिड है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों में प्रेरित क्यों हो जाता अब भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाश्नो महापापमा विद्यन्मिह वैरिनम। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो संसार में सर्वभाक्षी पापी शत्रु है। जो बात हमने पहले चिंता कर बात करी है, ध्यायतो विषयान् पुंसः, कि आप जो है जब विषयों का चिंतन करते हैं तो आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना पूरी ना होने पे क्रोध, और फिर मोह, स्मृति का विभ्रम, बुद्धि का नष्ट होना और पुनः भवभूत बन जाना। यहां पर चर्चा ये आ रही है कि न चाहते हुए भी शास्त्र क्या कहता है कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम, काम मतलब कामना, कामना का जो उदय है कब होता है, जब जीव का रजोगुण से संपर्क होता है, रजोगुण हावी हो जाता है। रजोगुण के हावी होने से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध आता है, और जो कामनाएं हैं वो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इंद्र विषयों के प्रति आपकी आसक्ति हुई है, शब्द रूप रस गंध ये सब जो है, ये इनके प्रति पहले सूक्ष्म कामना स्फुरना, किसी सुना ना तो एक हल्की सी स्फुरना आ गया, है भाई है, देन उसको पता करने की कोशिश हो जाए। पोस्टर देखा, हाँ हाँ अरे बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, देखें क्या है, और फिर आपका उसमें इन्वॉल्व हुए, इन्वॉल्व होते ही फिर कामना पैदा हो गई, आसक्ति हुई, आसक्ति से कामना पैदा हो गई। ये जो आपका सूक्ष्म टच है, जो सूक्ष्म जो है संबंध पैदा होता है इंद्र विषयों के साथ, ये जीव को स्टिमुलेट करता है, भड़काता है, भड़क जाता है, इंस्टिगेट हो जाता है, भड़कता और भड़काता है कि इसको प्राप्त करो, प्राप्त करने के लिए जो करना पड़े करो, अर्थात पाप करो, क्योंकि जो ईमानदारी से उस कार्य को, उस चीज को आप हासिल नहीं कर पाते हो, तो आपको जो है इंस्टिगेशन होता है, आप न चाहते हुए भी उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाते हो। ये होता है राग से, राग मतलब आपका उससे अटैचमेंट हो गया, टच आ गया तो अटैचमेंट हो गया। जैसे ही अटैचमेंट हो जाएगा वैसे ही जो है आसक्ति, आसक्ति पूरी नहीं होती, कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध। अब कामना को आपने जो है कंट्रोल करना, यहां कहा जा रहा है कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होती है, स्टेटमेंट आया ना भगवान का, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होती है। आपको किसी ने बताया फोन के बारे में, आपने सुना देखा, परंतु आपके मन के अंदर एक सिंपल सा भाव आया हुआ है, भाई फोन मेरे को तो इमरजेंसी के लिए सुनना है या करना है, तो उसमें एक लाल बटन चाहिए, एक हरा बटन चाहिए, और एक वो चाहिए एड्रेस बुक, इससे ज्यादा मुझे आवश्यकता ही नहीं है, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो ये काम तो मेरा 1000-1200 रुपए के फोन से चलता है, मैं उसके लिए 50,000 रुपए क्यों खर्च करूं, बेवकूफ हूं क्या? तो आपने मन के अंदर जब ये भाव आ गया, अर्थात अब आप समझ गए कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आप अपने आप को रजोगुण से हटाना पड़ेगा, मतलब जो वो फील था इस फोन को प्राप्त करने का, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, अर्थात आपको जो है सतोगुण में आना पड़ेगा। जो ही आप जो है सतोगुण में आते हो, रजोगुण से परे हो जाते हो, तो कामना आपकी वश में आ जाती है। नहीं, इट्स नॉट नीडेड, बेकार है, क्या जरूरत है इसमें, तेरा गुजारा 165 लीटर के फ्रिज से चल रहा है ना, तो तेरे को 600 लीटर का क्यों चाहिए, क्योंकि उसके पास है, उससे क्या फर्क पड़ता है उसके पास है, व्हाई डू यू नीड इट। तेरा बचा हुआ सामान जो है फ्रिज में टिक जाता है, पानी की बोतल ठंडी हो जाती है, तेरा गुजारा चल रहा है, तेरे को 600 लीटर का फ्रिज क्यों चाहिए, 4 डोर वाला फ्रिज क्यों चाहिए, 6 डोर वाला फ्रिज क्यों चाहिए, व्हाई डू यू नीड इट, जो कि 2 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का क्यों चाहिए तेरे को। अब बात समझ में आ गई, समझ में आते ही आसक्ति समाप्त, समाप्त होते ही डिजायर समाप्त, अर्थात आपको जो है कामना को वश में करने के लिए जो रजोगुण का संपर्क हो रहा है, रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में आना पड़ेगा। और टेक्निकली भगवान कहते हैं तेरे को तीनों गुणों से ऊपर उठना है, सतोगुण से भी ऊपर जाना। अब ये समाप्त नहीं होती, समस्या क्या है कि ये समाप्त नहीं होती, आप कामना को समाप्त नहीं कर सकते। एक राजा को बड़ा अहंकार था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, कौन सी ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर सकता। तो उसके गुरु जो है एक दिन उसके पास आए और कहने लगे कि ऐसा है, मेरे को भिक्षा चाहिए। अजी जो मांगो, राजा हूं, राज्य का मालिक हूं, जो चाहो मैं दे सकता हूं। ये मेरा कमंडलू है ना, कमंडलू कमंडल, इसके अंदर जो है कुछ दान डाल दो, ये भर जाए तो मैं फिर चला जाऊंगा, मेरा जिंदगी भर का गुजारा हो जाएगा, बहुत बहुत धन आ जाएगा इसके अंदर। तो राजा ने कहा अपने मंत्री से, भी इसके कमंडल में जो है कुछ धन डाल दो। धन डाला तो कमंडल खाली, राजा से कहा और डालो फिर खाली, और डालो फिर खाली, सोने ज्वारा हीरे रत्न मोती सब डाल दिए गए, सारा पैसा डाल दिया गया, सारी लक्ष्मी शक्तियां सब सब खाली खाली। और राजा गुरु के पैरों में पड़ गया, कहता है गुरु जी ये बताओ इस कमंडल में खासियत क्या है। कहता है ये कामनाओं का कमंडल है, ये कामना कभी पूरी नहीं होती, ये कमंडल जो है ये डिजायर्स का है, ये कमंडल जो है ये कामना का है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता, जितना मर्जी आप जोर लगा लो। ये सर्वभक्षी है अर्थात ये सब कुछ समाप्त कर देता है, आपके सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर देता है, और आप पाप के मार्ग पे लग जाते हो और फिर 84 लाख योनियों के चक्र से कभी बाहर नहीं निकल सकते। अब ये जाएगा कैसे? साम दाम दंड और भेद, ये चार सिस्टम है किसी को काबू में करने के। प्रेम से तो जाएगा नहीं, साम तो प्रेम है ना, आदान प्रदान प्रेम त्याग, उससे तो जाएगा नहीं। दाम इसके लिए कुछ कोशिश करी जाए, कुछ मेहनत करी जाए, कुछ कार्य किया जाए तो भी नहीं जाएगा। भेद ले ले तब भी नहीं जाएगा, तो कैसे जाएगा? ये जाएगा केवल दंड के द्वारा, दंड के द्वारा। और दंड क्या होगा, इसका दंड क्या है कि रजोगुण से संपर्क हटा देना है, अर्थात इसको डिस्कार्ड कर देना है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई जरूरत नहीं है, भाग जा, आई डोंट नीड यू। जब तक आप जो है उस लेवल पे नहीं आओगे, क्योंकि ये महान पापी है, ये आपको जीने नहीं देगा। आप विवेक समझते हैं, विवेक अर्थ है करने योग्य कार्य को करना, ना करने योग्य को नहीं करना। सत्य क्या है उसको समझना, असत्य क्या है उसको समझना, करणीय क्या है अकरणीय क्या है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं यत्ता यपि कौन्तेय पुरुषस्य विशिष्टता इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रस्पन्दनम्। ये इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। इंद्रियां प्रबल हैं क्योंकि इंद्र विषयों का संसर्ग उन्हें भटका देता। तो यहां पे कहते हैं कामना बहुत शक्तिशाली है, आपको उन कार्यों के लिए भी मजबूर कर देती है जो कि विवेक से आप समझते हो कि नहीं करने चाहिए। जो कहा जा रहा है ना, ज्ञानी समझता है फिर भी पाप कर्म कर बैठता है। आप समझते हो कि ये कार्य नहीं करना, आप समझते हो कि कार्य गलत है, परंतु फिर भी आप कर बैठते हो। ये जानते हुए भी कि इनको पूर्ण करने का प्रयास करें तब भी कामनाएं समाप्त नहीं होती। एक हार आ गया तो एक और चाहिए, वो तो मैंने सगाई में पहना था, शादी में थोड़ा पहनूंगी दोबारा, नया हार चाहिए, आई वॉन्ट अ सेकेंड वन। सेकेंड वन आ गया, रिसेप्शन के लिए तीसरा चाहिए, अर्थात वो तो पिछली बार पहना था अब चौथा चाहिए। अर्थात आपके पास जो है कामनाओं का जंजाल ऐसे अटका हुआ है जो कभी समाप्त नहीं होता, एक दो तीन चार, एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है। अब प्रश्न ये है, एक सवाल ये आता है कि जब सारे कार्य भगवान के द्वारा होते हैं और कामनाएं जो हैं क्या वो भी भगवान पैदा करते हैं? सोचने की बात है, हम कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या कामनाएं भगवान पैदा कर रहे हैं? नो, कामना जो है सूक्ष्म वासनाओं से उत्पन्न होती है, जीव को काबू में करती है और कर्म करवा देती है, इसलिए इसको पाप का साकार रूप कहा गया है। पाप का साकार रूप है कामना। महाभारत के अंदर उल्लेख आता है, इस पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त भोजन सामग्री, स्वर्ण, पशु, धन, स्त्रियां किसी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति को शांति प्राप्त करने के लिए भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान दीन बंधु हैं, दीनदयाल हैं, उपद्रष्टा हैं, अनुमंता हैं, साक्षी हैं, वो आपके हितैषी हैं, तो आपसे गलत काम क्यों करवाएंगे? करवाएंगे क्या? जीव खुद करता है, भगवान नहीं करवाते। ये आपके अंदर जो है डिजायर पैदा हुई है, कब हुई है? जब आपकी इच्छा जो है वो जागृत हुई, इच्छा जागृत हुई इंद्र विषयों का इंद्रियों के साथ संसर्ग होने पर, तब समस्या आती है, तब प्रॉब्लम आती है। जो आपके पिछले जन्मों के संस्कार हैं, संस्कार जो हैं वो चेतन है कि जड़ है? वो जड़ है, तो उनसे पाप क्यों होगा? करने वाला जो है वो चेतन होना चाहिए कि जड़ कार्य कर सकता? जब मृत्यु हो जाती है, जीव शरीर को छोड़ देता है, तब वो शरीर जो है वो अचेतन हो गया, अर्थात वो जड़ हो गया, तब वो कोई कार्य कर सकता? देख सकता है, सांस ले सकता है, हाथ हिला सकता है, कर सकता है कोई? तो जड़ वस्तु तो कोई कार्य कर नहीं सकती। इसका मतलब है जो भी ऐसा है वो आपके अंदर जो जीव बैठा हुआ है, जिससे डिजायर होती है और मन के थ्रू प्रकट होती है, वो जब रजोगुण के संपर्क में आता है तो जो भौतिक प्रकृति है, रजोगुण जो है उस पर हावी हो जाता है और उसकी जो एग्जैक्ट उसको करना चाहिए, जो उसके लिए नियमित है, जो उसका ज्ञान है, वो ढक जाता है। जब ज्ञान ढक जाता है तो आप गलत कार्य कर बैठते हो, उससे बच नहीं सकते। इसीलिए इसको कहा गया है महापापमा, अर्थात ये महान पापी है। शास्त्र कहता है कि कामना आपके अंदर प्रवेश करती है तो उसका जो मुख्य इंद्रिय है जिसके द्वारा प्रवेश करती है वो है आंख। सुन लेंगे ना, अच्छा आईफोन है तो अच्छा देखेंगे तब बात करेंगे, अभी तक आसक्ति नहीं हुई थी, अभी सुरना हुई थी, यस एक टच आया था बस। आंख ने देखा है काम करते हुए तो आसक्ति पैदा हुई है। तो जो काम है, जो कामना है आपके शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करती है? आंख। विल मंगल ठाकुर जो है एक वैश्या से संबंध बन गया है, उसके प्रति आसक्त थे, पत्नी के शरीर को नाव मान के उनके यहां पहुंचे, विष्धर सांप लटक रहा था उसको रस्सी पकड़कर, रस्सी समझ के वैश्या के यहां पहुंचे, जब उसने फटकार लगाई तो वृंदावन में आ गए। फिर एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, फिर उसके प्रति आकर्षित हो गए, उसके पति ने, पति घर में आया, देखा सन्यासी बाहर बैठा, एक साधु बाहर बैठा हुआ है, पत्नी से पूछा ये कौन है, किस लिए आया है? कहते भोजन प्राप्त करने आया है, इसका मन जो है हमसे बातचीत करने का है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पति ने उसको अंदर बुला लिया, पूछा तो उसने कहा कि मैं पत्नी से आपकी बड़ी आकर्षित हो गया हूँ। तो पति ने पत्नी ऑफर कर दी, जाइए मेरी पत्नी के साथ, पत्नी से कहा कि सेवा करो। अब विल मंगल ठाकुर की बुद्धि जो है उसमें एकदम प्रकाश आया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो दो सुइयां मंगाई और अपनी आंखें फोड़ ली, अंधे हो गए, सूरदास कहलाए। कामना, डिजायर, काम आंख के रास्ते प्रवेश करती आंख से। इसलिए शास्त्र कहता है कि आंखों को हमेशा भगवान के दर्शन में लगा हो। भौतिक इंद्रियों के साथ उसका जो संसर्ग है वो दृश्य जो है वो ठाकुर जी का होना चाहिए, भौतिक संसार का नहीं। नहीं तो कामनाएं तुरंत फुरंत प्रवेश करती रहेंगी, पहले स्फुरना होगी, फिर संकल्प होगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर कामना आ जाएगी, फिर आप फुलफिल करने के लिए पाप का कार्य कर बैठो। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। इसको फॉलो करना आसान काम नहीं है। ये जो भगवद गीता के अंदर तीसरे अध्याय के 36वें से लेके 43वें तक जो श्लोक है ये आप सबको पढ़ने चाहिए। इस पर अगर चर्चा करेंगे तो आधा घंटा और लग जाएगा। तो अभी आज सत्र में समाप्त हो रहा है, 9 बज गए हैं। अभी हमें जगन्नाथ दास बाबा जी की कथा भी करनी है, 5-7 मिनट उसके लिए लेंगे, शेष फिर कभी इसके बारे में। अभी चर्चा करेंगे हम जगन्नाथ दास बाबा जी का। आज तिरुभाव दिवस है, तिरुभाव है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी कौन है, कितने लोग इनके बारे में जानते हैं? कौन है जगन्नाथ दास बाबा जी, कौन है जी बताइए? कुछ रोशनी डालिए, 2-4 लाइनें। यस बताइए माता जी, बताइए। गुरु शिष्य परंपरा में है, ठीक है। और बताइए, भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु थे, और क्वालिटी क्या थी उनकी? और
भगवान
चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रकट करता है। आयु कितनी थी इनकी टोटल?
125।
थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा आगे कर दो, सीधा ही 25 है एकदम। प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 का फॉर्मूला चल रहा क्या? चलिए, बहुत बढ़िया जीवनी है, छोटी सी है, 5-7 मिनट लगे, समय है ना 5-7 मिनट का, जल्दी तो नहीं। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 144 वर्षों तक जीवित रहे, 144 ईयर्स। उन्होंने श्री मधुसूदन दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण करी तथा वृंदावन में सूर्य कुंड पर अनेक वर्षों तक भजन किया। ठाकुर भक्ति विनोद ने जगन्नाथ दास बाबा जी से शुद्ध भक्ति के विषय में अनमोल आदेश प्राप्त किया। 6 मास नवदीप मंडल में और 6 मास ब्रज मंडल में व्यतीत करते थे। उस समय गौड़ एवं ब्रज मंडल तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ दास बाबा जी सर्वाधिक उन्नत रसिक वैष्णव थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें सार्वभौम अर्थात वैष्णवों में श्रेष्ठतम की उपाधि से सम्मानित किया था। 125 वर्ष की अवस्था में, अब यह 25 वाली बात आ रही है कुछ कुछ, उनकी झुकी हुई अर्धचंद्राकार देह प्रतीत होती थी। उनकी पलकें एक बड़े मंचपट की भांति उनकी नेत्रों पर लटकी रहती थी। उनके दोनों ओर खड़े होकर 2 शिष्य उनकी पलकों को ऊपर उठाते तब अपने गिरिराज गोवर्धन के अर्च विग्रह को तुलसी मंजरियां अर्पण कर पाते। ये जो ये पलकें हैं ये वाली, नॉर्मली जब आप देखते हो तो ऊपर उठ जाती हैं और आंख के अंदर आपको आंख दिखाई देती है, पर ये गिरी रहती थी हमेशा, एज फैक्टर था तो इसको उठाना पड़ता था। तो शिष्य जो है पलकों को उठाते थे तब उनकी आंख जो है सामने देख पाती। जगन्नाथ बाबा जी नामात्र को ही चल पाते थे, उनका ब्रजवासी सेवक बिहारी उन्हें कंधों पर उठाकर ले जाता था, किंतु जब भी नाम कीर्तन होता जगन्नाथ बाबा जी फान कर अपनी टोकरी से बाहर आ जाते और हवा में 4 फुट तक छलांग मारते। अत्यधिक भावन मारने में नाचने लगते, गाने लगते। शारीरिक शिथिलता होते हुए उन्होंने प्रबल भजन संपन्न किया। उन्हें जप तथा कीर्तन दोनों ही उच्च स्वर में करना प्रिय था। कीर्तन करते हुए गाते, निताई की नाम मैंने छिरे, की नाम मैंने छिरे, की नाम दिते छिरे। ये बंगला है सारा। हे नित्यानंद प्रभु, आप क्या अद्भुत नाम लाए हैं। हे निताई, आपने क्या अद्भुत नाम दिया है। लगभग संपूर्ण रात्रि कीर्तन करने के उपरांत अगले दिन प्रातःकाल अर्च्य विग्रह को 1108 बार दंडवत करते थे। वैष्णव सेवा हेतु सर्वदा उत्साहित रहते थे। उन्होंने संहिता हार तथा वार्षिक चतुर्मासी व्रत का पालन करके एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। प्रथम मास में वे सायंकाल में केवल 4 केले ग्रहण करते थे, दूसरे मास में केवल अमरूद, तीसरे मास में केवल छैने का पानी, छैना मिस पनीर, और चौथे मास में नमक रहित उबले हुए केले के पुष्प। एक बार उन्होंने वृंदावन के एक भंगी से रोटी की भिक्षा ग्रहण करी। ये सुनकर वृंदावन के अग्रजनों ने जगन्नाथदास बाबा जी से कहा, बाबा आप व्रत शिरोमणि हैं, किसी के भी मुख से आपकी आलोचना सुन हमारा मन व्यथित होता है, किंतु अब तो सभी आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं बाबा जी प्रमादी हो गए हैं, यदि वे पुरातन प्रथाओं की अवहेलना करेंगे तो समाज का क्या होगा। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, आप सब सुजान जन हैं, क्या वृंदावन के रज के महत्व को नहीं जानते। यह कृष्ण प्रेम से इतनी समृद्ध हो गई है कि ब्रह्मा जी भी व्रज रस का एक कण बनना चाहते हैं। अतएव वृंदावन का वह भंगी जो निरंतर उस रज की सेवा करता है, उसी में श्वास लेता है, उसी में लौटता है और उसी में लगा रहता है, सना रहता है, क्या वह सर्वाधिक निर्मल नहीं है। समस्त वातावरण स्तब्ध हो गया और बाबा जी के उत्तर की स्वीकृति का एक संकेत था। नवदीप धाम में निवास करते समय जगन्नाथ दास बाबा जी ने समस्त निवासियों का आदर किया, यहाँ तक कि यदि उनकी थाली से कुत्ते के पिल्ले भी खा ले तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं करते थे। कुत्तों को अपने गुरु का प्रसाद हड़पते देख उनका सेवक बिहारी झल्ला उठता और उन्हें खदेड़ देता। जगन्नाथ दास बाबा जी को बिहारी को डांटते, कुत्ते धामवासी हैं, साधारण जीव नहीं है, मैं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगा जब तक वे वापस आकर मेरी थाली से महाप्रसाद नहीं खाते। 142 वर्ष की अवस्था में वे ना तो देख पाते थे ना ही चल पाते थे। अपनी खोज की पुष्टि हेतु ठाकुर भक्ति विनोद ने जगन्नाथ दास बाबा जी से चैतन्य महाप्रभु की प्रकट स्थली को देखने का अनुरोध किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के योग पीठ के दर्शन करके जगन्नाथ दास बाबा जी ने गौरांग प्रेम से उन्मत्त होकर हवा में छलांग लगाई और नाचने लगे। थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ कि आपने उन्होंने देखा है कि दूर से एक रोशनी जो है वो एक जगह से बाहर आ रही है। कितने लोगों ने दर्शन किए हैं योगपीठ के, जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य स्थल है उसके दर्शन कितने लोगों ने किए हैं और कितने लोगों ने नहीं किए हैं। इनमें से कितने लोग नहीं करना चाहते, सभी करना चाहते हैं, तो सबको जाना चाहिए। नर प्रभु जाना, जो प्रोग्राम बनाओ सबको लेके जाओ। आज योगपीठ में ही है, योगपीठ की चर्चा हो रही है, देखो क्या क्या कैसा उत्सव है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी को भक्ति विनोद ठाकुर जो है वहां पर लेके जाते हैं कि यहाँ पे जो है जो देखते हैं कि यहाँ पे वो रोशनी का उदय हो रहा है, एक रोशनी जो है धरती से निकल के आकाश की तरफ जा रही है। तो वो जो है जब वहां पहुंचते हैं तो टोकरी में होते हैं, वहां पहुंच के जो है टोकरी से बाहर छलांग लगा देते हैं, नाचने गाने लगते हैं। आचार्य गण का कहना है कि समस्त वतजीवों पर कृपावश जगन्नाथ दास बाबा जी ने अपनी भजन शक्ति, शास्त्र ज्ञान, प्रेमा भक्ति सहित सीधे भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में अंतरित कर दी। जगन्नाथ दास बाबा जी के अनेक शिष्य थे। बाबा जी प्राय निम्नांकित उपदेश दिया करते थे, उनके 4 उपदेश यहाँ वर्णित हैं। तुम्हें स्त्रियों, स्त्रियों का संग करने वाले पुरुषों अथवा किसी भी प्रकार से स्त्री का संग करने वाले पुरुष का संग करने वाले पुरुषों के संग का परिहार करना चाहिए। परम गति प्राप्त करने के हेतु तुम्हें नियम बद्धता एवं दृढ़ता पूर्वक हरि नाम का पुनश्चय उच्चारण करना चाहिए। नियम बद्धता इतनी महत्वपूर्ण है कि अपने प्राण को संकट में डालकर भी इसे बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण से भी अधिक करुणाकर और शुभांकर गौर का कभी विस्मरण न करो। श्री कृष्ण एक शासक की भांति है जो अपने न्याय के संचालन में तुम्हारे अपराधों पर विचार करते हैं, गौर तुम्हारे अपराधों पर ध्यान नहीं देते। श्री कृष्ण न्याय के विधान के प्रति अधिक उन्मुख हैं, जबकि गौर कृपा के वितरण में अधिक रुचि रखते हैं। इस दृष्टिकोण से गौर कीर्तन कृष्ण कीर्तन से अधिक हितकारी है। गौर कीर्तन के अभिप्राय है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। श्री कृष्ण द्वापर युग के अवतार हैं, गौर कलयुग के अवतार हैं। जिस युग में हम रह रहे हैं हमें उसी युग के अवतार के नाम तथा महिमा का कीर्तन करना चाहिए, जैसे हम एक राज्य में उसका शासन करने वाले राजा का गुणगान करते हैं। जय शचिनंदन गौर हरि, जय शचिनंदन। वृंदावन के गोपाल बाग में स्थित सोनार औरांग मंदिर में नौ निताई के वर्ष विग्रह में विराजमान हैं, उनकी जगह जिनकी जगन्नाथ दास बाबा जी द्वारा कभी सूर्य कुंड में पूजा की गई थी। श्री कृष्ण लीला में रसिक मंजरी के रूप में विख्यात। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है किसी का?
हाँ प्रभु, जैसे आपने बताया कि यमलोक जाने में दो मुहूर्त का समय लगता है, तो जैसे प्रभुपाद बुक्स में हम पढ़ते हैं कि कि व्यक्ति जैसे एक चलता है तो अपना दूसरा पाँव तब उठाता है जब पहला पैर वो धरती पर रख लेता है, तो वो निश्चित हो जाता है कि शरीर छोड़ने से पहले निश्चित ही हो जाता है कि उसका अगला ध्येय क्या होने वाला है, तो फिर ये कैसे दोनों स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल करें?
देखिए ऐसा है, आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो निश्चित है कि आपको उसका ये फल मिलना है। पता है मेरे को जेल होनी है, पता है मुझे जेल में जाके चक्की पीसनी है, पता है मैंने ये गलत कार्य किया मुझे फल मिलना है, परंतु उस फल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोर्ट करता है। अगर मैं डायरेक्टली जाके बोलूं जी मैंने गलत काम किया है मेरे को चक्की पीसने के लिए दे दो या मुझे जेल में रख लो, तो वो आपको एक पीरियड मिलता है, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता है तब तक आपको उसका फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? पता तो मेरे को मालूम है मैंने पाप का कार्य किया है मुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा, मैंने मर्डर किया है, पुलिस कस्टडी ले लेती है जी, इसकी कस्टडी 4 मार्च तक हमारे पास रहेगी, 14 दिन का पुलिस कस्टडी दे दो, 18 दिन का दे दो, 2 महीने का दे दो, महीने भर का दे दो, आपको एक कस्टडी मिलता, उसमें फिर जो है कोर्ट में केस जाएगा, फिर डिसीजन होगा। तो यमराज का जो स्थान है कोर्ट के समान है, यू नो आपको पता है कि आपको क्या होना क्या नहीं होना, पर वो डिसीजन जो है अल्टीमेटली अलॉटमेंट जो है वहाँ से होती है कि इसको इस योनि में डाल दिया जाए। कार्य तो आपने गलत किया मुझे पता है, मैंने आपका धन ठगा, मुझे तामिश्र नरक में जाना है, वो नरक में जाने के लिए कोई पात तो बनेगा ना, तो वो जो डिसीजन है जो यमराज की जो अपनी एक 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 उसका जो ऑफिस है उसकी फिर जरूरत क्या थी, व्हाट वाज द नीड, वो एक एक प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए है। मालूम है बहुत तरह है, ये गरुण पुराण से है, दोनों चीज़ें ठीक हैं। यस आपने गलत काम किया है, आपको पता है धन ठगा है, मुझे तामसिर नरक में जाना, तो डिसीजन हो गया, डिसीजन तो हो गया कि मैंने आपके धन को ठग लिया है, मैंने आपसे बेईमानी करके आपका पैसा हड़प लिया है, उसका फल है तामसिर नरक। और तामसिर नरक की जो एक्चुअल जो फॉर्मल अलॉटमेंट है जो सिस्टम है वो ऊपर से अलॉट होना। हरे कृष्णा। शिल्पवाद की। साई गौर प्रेमानंद।